ओम शांति। 31 दिसंबर 2016 की अव्यक्त मुरली से प्रश्नावली। सभी के दिल में एक ही बाबा है जो कितना भी भुलाने की कोशिश करते तो भी नहीं भूलता, क्यों? सभी के दिल में एक ही बाबा है जो कितना भी भुलाने की कोशिश करते तो भी नहीं भूलता, क्यों? भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से, गीत है ना? जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तो क्यों? प्राप्ति बहुत ज्यादा है, भारी प्राप्ति है, भारी वखर। और जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया, इसके लिए भूलना मुश्किल है। और जमघटों से मुक्त कर दिया। और क्यों 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 भूलता नहीं?
एक का पाठ पक्का होता है, कब नहीं भूलेगा?
नहीं नहीं, कब नहीं भूलेगा? नहीं, ऑलरेडी नहीं भूल रहा है। अंदर में, अंदर में खुशी आती है इसलिए भूलता नहीं है। और बोझ हल्का करने वाला है, पीड़ा हरने वाला है। भक्ति में भगवान को क्या नाम है? हरि। हरि अर्थात हरने वाला, ले लेने वाला, चुरा लेने वाला, लूट लेने वाला, लुटेरा भी कहते हैं। दुख दर्द पीड़ा वेदना सब समाप्त करने वाला, सर्व संबंधों से साथी है। सर्व संबंधी तेरे सम कौन है? तो कितना भी भूलाने की कोशिश करो फिर भी भूलता नहीं है, क्यों? एक बार इसके पास चले जाओ तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक मुरली में बाबा ने डबल विदेशियों से मुलाकात, जैसे वहां सुपर बाजार में जाते हो तो एक ही जगह सब चीजें मिल जाती है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। अलग अलग जगह पर मॉल, मेगा बाजार, सुपर बाजार, तो ये भी स्पिरिचुअल सुपर बाजार, सुपर मॉल है। यहां एक बार आ गए तो वहां खाने की भी चीजें हैं, पहनने की भी चीजें हैं, खेलने की भी चीजें हैं, पिकनिक की भी चीजें हैं, एंटरटेनमेंट की भी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक की भी चीजें सब है। मॉल में सब कुछ होता है, जितना बड़ा मॉल उसमें सब कुछ होता है। कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, और जो चाहिए वो ले लो। हर जगह पेमेंट नहीं करना होता है। एक बार तो, परंतु हाँ, उसमें घुसने की ताकत उसी में होती है जो पेमेंट करने को, जिसके पास जेब थोड़ा भरा है। जिसके पास है ही नहीं वो चक्कर मार के आ जाएंगे विंडो शॉपिंग करके, परंतु खरीद अपनी बैग में, ट्रॉली में वही लोग सामान लेके डालेंगे जिनको पता है हमारे पास पैसे है। तो उसकी शर्त है, यहां पर भी शर्त है, जीवन को दांव पर लगाना होगा तो सब कुछ मिलेगा। प्राप्तियां भारी है परंतु कीमत भी भारी है। जितनी बड़ी प्राप्ति उतनी भारी, उतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। महात्मा गांधी ने कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये वाक्य लिखा है, जितनी ज्यादा प्राप्ति चाहिए उतनी ही ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। सभी के दिल में एक ही बाबा है, कितना भी भुलाने की कोशिश करते तो भी भूल नहीं सकता, क्यों? एक ही सहारे दाता है और बहुत समय के बाद मिल गया। कितने समय के बाद? हो गया प्राप्ति। निष्काम सेवाधारी है और तो अपना है और दुर्गति से बचा दिया और बीमार होते हैं तो बीमारी ठीक करता है क्या? बीमारी ठीक करता है? कब करता है? कर दी। पर जल्दी करता है लेट करता है? उसकी तरफ से, अपने रीति से, अपने तरीके से, हमारे तरीके से नहीं, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं, क्योंकि हम शायद बहुत छोटा सोचते हैं, उसकी प्लानिंग बहुत बड़ी है। ट्यूबुलर विजन है हमारी, संकुचित दृष्टि है, उसमें हम सोचते हैं मेरे लिए ये ठीक है, परंतु वो कुछ और ही सोच रहा है। लक्ष्मण सोचता है कि हम वन में क्यों जाएं, जबकि हमें तो राज्य मिलना चाहिए, विद्रोह के लिए खड़ा है। परंतु बृहद दृष्टि, विहंगम दृष्टि परिस्थितियों पर डालने से पता चलता है कि हमारी जो दृष्टि थी बहुत छोटी थी, उसमें ही बहुत कुछ कल्याण समाया हुआ था। हमारा, कल भी हम कह रहे थे, हमारा, हमें ये पता है कल्याण किस में है, बाबा को ये पता है हमारा परम कल्याण किस में है। हम सोचते हैं हमारे रीति से ये कल्याण हो, ऐसा है तो कल्याण है, ये व्यक्ति बीच में इसको हटा दो बाबा तो कल्याण होगा। बाबा सोचता है नहीं, वो वहीं चाहिए, नहीं हटाएंगे उसको। व्यक्ति परिस्थिति यही परिपक्व बनाएंगे, इन्हीं के द्वारा माया आएगी, यही मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसके लिए वो हमारे परम कल्याण की चिंता में है और हम अपने कल्याण की चिंता में है। तो क्यों भूलता नहीं? क्योंकि वो परम कल्याणकारी है। वो जो सोचता है, उसकी जो प्लानिंग है, उस हर बात में कल्याण छिपा हुआ है। और क्यों नहीं भूलता? क्योंकि उसके उपकार बहुत है। उपकार तुम्हारे बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है कैसे मैं समझाऊं। उपकार किए है उसने, बहुत उपकार किए। संसार में कोई थोड़ा सा उपकार करता है तो व्यक्ति उसे कभी भूलता नहीं है। उसी दम तेरा वो आना, उसी दम तेरा वो आना, बचाना ना भूल पाएंगे। जब अब बस कगार पर खड़े थे विनाश के, जीव घात करने ही वाले थे संसार से दुखी होकर, उसी दम तेरा वो आना। एक नाटक हुआ था यहाँ पर कभी, बहुत पहले, शायद ओम शांति भवन में ही, जिसमें वो एक व्यक्ति बना है कुमार, वो सुसाइड करने जाता है और उसे आके कोई बचा लेता है। तो उसमें वो दिखाया था कैसे बाबा ने बचा लिया। उपकार क्या क्या मिला है, क्या क्या उपकार किए हैं, क्या क्या प्राप्ति हुई है, क्या क्या भाग्य खुले, कौन कौन से खजाने मिले हैं, उसका निरंतर स्मरण चिंतन अगर करे तो स्थिति ऊंची रहती है। ये विस्मृत होते ही स्थिति नीचे चली जाती है। मेडिकल जगत में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, पेड इन फुल विद ग्लास ऑफ मिल्क, उसका शीर्षक है पेड इन फुल विद ग्लास ऑफ मिल्क। एक छोटा सा बच्चा होता है जो बहुत ही गरीब है, पैसे नहीं है, पढ़ाई करने के लिए उसे खुद कमाना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें बेचता है, कभी इस घर जाता है, कभी उस घर जाता है, यहां वहां बेचता है। एक दिन इतना भूखा होता है कि सोचता है अगले घर में जाऊंगा तो जरूर भोजन मांगूंगा। ठक ठक करता है, एक स्त्री दरवाजा खोलती है, पर उसे देखकर उसे लगता है कि कैसे मांगू भोजन, तो वो भोजन की बजाय मांग कहता है कि मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। पर वो स्त्री देखती है कि बहुत ही भूखा मालूम पड़ रहा है, प्यासा मालूम पड़ रहा है, तो उसे पानी की जगह एक बहुत बड़े ग्लास में वो दूध लेकर आती है और उसे देती है और वो दूध पीता है। शायद उसके मन में उस दिन ऐसा था कि आज अगर भोजन न मिले तो जीवन का ही अंत कर दूं, ऐसी उसकी अवस्था होती है। बच्चा तो वहां से चला जाता है, पर ये जो बात उस माई ने कर दी थी वो कभी भूलता नहीं। एक बार कई साल गुजर जाते हैं और यही स्त्री फिर एक बार कैंसर की मरीज बनती है और कहीं बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होती है, जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी, बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए, ब्रेस्ट कैंसर। तो वहां का जो मुख्य डॉक्टर होता है, डॉक्टर हॉवर्ड केली, जो कि इस जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी जो थी वहां का फाउंडिंग फादर इन द ब्रांच ऑफ गायनेकोलॉजी, तो बहुत बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट जो होता है उसको पता चलता है ये कौन महिला है, तो वो ढूंढता है, उसको पता चलता है ये उस गांव से है, तो उसके मन में कुछ आता है कि मैं इसे शायद जानता हूं। और उस स्त्री का वहां इलाज होता है, उसके कैंसर की बहुत लंबा समय हॉस्पिटल में रहती है, उसका इलाज होता है, वो ठीक भी हो जाती है और उसका डिस्चार्ज होता है। वो महिला सोचती है कि शायद बिल बहुत ज्यादा होगा, शायद पूरी जीवन ही मुझे लगा देना पड़ेगा इसका पेमेंट करने के लिए। तो एक लेटर आता है, नर्स लेके आती है और जिसपे लिखा रहता है बिल पेड इन फुल विद अ ग्लास ऑफ फुल ग्लास ऑफ मिल्क। वो जो छोटा बच्चा होता है वो जाके ये डॉक्टर बन जाता है। सत्य घटना है, डॉक्टर हेवर्ड केली 1948 में ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया, पर उसके जीवन की यह कहानी बहुत प्रसिद्ध है। तो क्यों भूलता नहीं, क्योंकि उपकार। अगला प्रश्न है, मेरे अंदर बाबा बैठा है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है और उसकी सार्थकता कब सिद्ध होगी? किसने बनाया ये प्रश्न? मेरे अंदर बाबा बैठा है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? बाबा नहीं, बाबा मेरे अंदर बैठा है इसका वास्तविक अर्थ, वो मेरे अंदर बैठा है इसका अर्थ बाबा के श्रीमत पर, बाबा हमारे अंदर बैठा है इसका क्या अर्थ है और उसकी सार्थकता कब सिद्ध होगी? अच्छा, और वो मेरे अंदर बैठा है इसका अर्थ मतलब वो हमारे अंदर है, मतलब उसकी याद है, ये वाला पॉइंट है। वो आप जो बता रहे हो वो सार्थकता कब सिद्ध होगी उससे संबंधित है। प्रश्न है कि मेरे अंदर बैठा है इसका अर्थ क्या, मतलब मेरे साथ है, अर्थात मैं उसकी याद में हूँ, आज की मुरली में, आज की मुरली अव्यक्तवाणी संडे की संगम युग पर बाप दादा आपके साथ है, संगम युग पर बाप दादा आपके साथ है, हर समय हाजिर नाजिर है, बुलाया और हाजिर, याद किया और हाजिर, तो इस समय वो हमारे साथ है, साथ है, अंदर है। भक्ति में बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापक नहीं हूं, तुमने मेरी ग्लानी की है मुझे सर्वव्यापक कहकर। ठीक है, ये भक्तों के लिए कह रहे हैं कि मैं सर्वव्यापक नहीं हूं, ये ज्ञान है। बच्चों के लिए कह रहा है मैं हाजिर नाजिर हूं, तुम्हारे आगे पीछे हूं, तुम्हारे अंदर बैठा हूं। अब आत्मा इतनी सारी, हर आत्मा में बैठा है और हर आत्मा के आगे पीछे, अर्थात सर्वव्यापी हो गया ना, सर्वव्यापी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट हो ही मैं जाना। बाबा खुद कहता है मुझे सर्वव्यापक मत कहना, मैं सर्वव्यापक सबसे ज्यादा उसको इधर फील होता है दो बातों से, एक तो सर्वव्यापी और दूसरा मेरी जगह इसका नाम डाल दिया। ये दो बातों के लिए आज तक उसने कभी, उसे बिल्कुल उसकी बर्दाश्त से बाहर है ये दो बातें। परंतु मेरी जगह इसका नाम डाल दिया, उसे बाप नहीं कहा जाएगा। परंतु यहां बाबा कह रहे बाप हर बच्चे के हाजिर याद करो और हाजिर, माय फादर इज इन मी एंड आई एम इन माय फादर, वो मुझ में और मैं उसमें। तो हर समय बाबा मेरे अंदर बैठा है, अर्थात हर समय वो मेरे साथ है, मेरे संग संग। बच्चों ने गीत गाया था उस दिन, चलते हैं बाबा जैसे जैसे चांद गगन में चलता है, तो मेरे अंदर बाबा बैठा है, अर्थात वो मेरे साथ है, नजदीक है, समीप है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, छत्र है, छत्र छाया है, कदम पर है, कंबाइंड है, उसकी किरणें पड़ रही है, दिल में है, दिल की डिब्बी में समाया हुआ है। उसकी सार्थकता कब सिद्ध होगी, परंतु कब कहा जाएगा कि है, कि बस ऐसे ही है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, बैठा है। तो चलन चेहरा सूरत सिर प्रत्यक्ष दिखाई दे, अल्लाह लोक है, ये पता चले आत्माओं को। उस दिन बताया था ना सात पॉइंट्स, एक पॉइंट थी प्रत्यक्षता की, अल्लाह लोक है, विश्व रक्षक है, विश्व कल्याणकारी है, और आज की मुरली में जगत माता, शक्ति माँ, बेहद की माँ, पालना दे आत्माओं को, वह स्वरूप उनको दिखाई दे। जैसे तुम कहते हो मेरा बाबा, वो कहेंगे मेरी माँ, और तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। शरीर में भर दर्द हो लेकिन शक्लें सदा मुस्कुराती रहे, उसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है, कौन सा? पर दर्द के समय अच्छा, अगर तेज सिर दर्द हो रहा हो तो आश्चर्य हो पाए था क्या? 104 बुखार, आशीष भाई आश्चर्य कैसी नहीं, पर बीमारी तो अचानक आएगी, फिर प्रैक्टिस कब करेंगे? श्रद्धा बहन क्या बोला? हाँ 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 गुरु, हाँ रामदास स्वामी, हाँ 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 किसको? हाँ अच्छा, कैसे निकाला बुखार को? तपस्या से, तो तपस्या से बुखार को बाहर निकाल देना। ऐसे लेके ऐसे कर देना, ठीक है? तो शरीर में कितना भी दर्द हो शक्ति मुस्कुराती रहे, कैसे कौन सा पुरुषार्थ करना है? ज्ञान की भरपूरता चाहिए, प्रकांड ज्ञान, अखंड ज्ञान भरा हो, तो वो ज्ञान की पॉइंट तब भी याद आ सके। ज्ञान की अनुभूति और योग का कुछ बार बार साक्षीपन का अभ्यास, अपने ही देह से साक्षीपन, ये मेरी देह है, अपने विचारों से भी साक्षीपन, अपने भावनाओं से भी साक्षीपन, ये जो फीलिंग है उससे भी साक्षी, सबसे साक्षीपन, साक्षीपन का अभ्यास, बार 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 साक्षी। और हिसाब किताब चुप तो हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा। व्याधि आई, वाह व्याधि वाह, 95 की मुरली अव्यक्तवाणी, वाह व्याधि व्या। अगर कोई मेहमान घर में आ जाए और उसकी तारीफ करो तो वो खुशी खुशी से विदाई देता है, अगर बीमारी आ जाए तो उसकी इतनी तारीफ करो, इतनी तारीफ करो। तो उसकी कंप्लेंट नहीं करो, उसकी प्रति हमारा भाव थोड़ा पॉजिटिव हो, ये क्यों आया, ये नहीं सोचो, बहुत अच्छा है आया, बैठो और खुश हो, खुशी खुशी उसे विदाई दो, उसके प्रति भी कोई कंप्लेंट का भाव नहीं। ठीक है, आया बहुत अच्छा, आ जाओ मेरे मित्र, अच्छा किया तुम आए, कहाँ थे, बहुत दिनों बाद आए, आओ बैठो आराम करो। हाँ, कोई कंप्लेंट नहीं बीमारी के बारे में, हाँ दूसरों को प्रॉब्लम है। सीक्रेट नाम की एक किताब लिखी गई है रोंडा ब्रायन, तो उस किताब में एक वर्णन है एक स्त्री का, जिसमें उसने लिखा है कि उसे कैंसर की बीमारी हो गई थी और उसने उसे कैसे दूर किया। तो उसने बड़ा ही विचित्र सा वर्णन लिखा है, उसने लिखा कि फनी मूवीज, कॉमेडी मूवीज देख देख के, इतनी हंसी दिन रात हंसती रहती थी, कॉमेडी मूवीज देखती थी और हंसती रहती थी, जब हंसते हैं जोर जोर से, नकी पर भी देखा होगा जोर जोर से लोग हंसते हैं, हा 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 ऐसे जोर जोर से हंसते हैं, आसपास कोई नहीं है हंसना, परंतु हंसने से केमिकल्स रिलीज होते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स, कुछ हमारे शरीर में सीरोटोनिन और ये सारे, अभी नया केमिकल खोज के निकाला आनंदामाइड, आनंदामाइड, तो ये सारे रिलीज होते हैं, उससे ही बहुत सारी चीजें हीलिंग होता है, लाफ्टर से, वर्णन लिखा है उस किताब में, सीक्रेट किताब भी है, मूवी भी है, और ऑस्ट्रेलियन ऑथर की लिखी हुई, कितनी सारी उसकी अपना मालूम कॉपी बिक गई, परंतु बातें वही है जो बाबा ने कही है, कब कही है, वहां 69 से लेके तो 80s में, वो किताब तो अभी अभी आई है, नया उसमें ऐसा कुछ नहीं था, परंतु फिर भी लोगों के लिए नए ढंग से पेश की गई थी बातें। तो एटीट्यूड क्या है बीमारी के प्रति, माइंडसेट क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, दृष्टिकोण क्या है, कैसे हम उसे ले रहे, कंप्लेन का भाव है, गिल्ट का भाव है, अपने प्रति सोच रहे कोई ध्यान नहीं देता मेरी तरफ, ये भाव है, क्या भाव है। योगेश्वर तो कल हो गया था, कंट्रोल ऑफ माइंड हो गया था, अंदर में कौन कौन से घुटके हैं जो सुख शांति आनंद प्रेम से दूर कर रखते हैं, अंदर में कौन कौन से घुटके हैं मिट्टल भाई जो सुख शांति आनंद प्रेम से दूर रखते हैं। कौन से गुटके हैं अंदर कि छोड़ दिए सारे, वो भी छोड़ दिए और ये भी छोड़ दिए ना, सुख शांति आनंद प्रेम से दूर करते हैं, चोकिंग, इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका करते हैं चोकिंग, थ्रॉटलिंग, दम घुटता है जिससे, कौन से है वो, नकारात्मक संकल्प। कल हम कह रहे थे ये जो सजा वाली जीवन है उसमें शायद 2-3 बातें छोड़ दी थी, पहला बताया था गिल्ट, अपराध भाव, दूसरा बताया था स्ट्रेस, तीसरा बताया था भय और एंजाइटी, चौथा बताया था असुरक्षा, पांचवा है अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित निगेटिव और वेस्ट संकल्प, नकारात्मक और व्यर्थ संकल्प, अनियंत्रित विकारों के संकल्प, ये चीजें भी है उसमें। सजा का जीवन है ये, और डिप्रेशन, ऐसी वो सात बातें थी। असफलता, बहुत सारी आ सकती है, फिर छोटे छोटे विकारों के अंश, चिड़चिड़ापन, बात बात में दुखी हो जाना, एनॉय हो जाना। एक दादी प्रकाश मणि का क्लास है, एनॉयड, इरिटेट हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना। एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम विश्व कल्याणकारी हो, जो स्वयं चिड़चिड़ा हो रहा है क्या वो विश्व कल्याणकारी है फिर? एक जगह उसी क्लास में दादी ने कहा है, दादी प्रकाश मणि की क्लास है, दुख के लिए है वो, ब्रह्मा बाबा के सामने अगर कोई दुखी हो जाता तो बाबा कहते थे क्या हुआ, कोई मर गया क्या? पति मर तो नहीं गया तुम्हारा? दुखी बाप के बच्चे और दुखी हो नहीं सकता, इसी मुरली में कहा है। बाप बच्चों को दुखी देख नहीं सकता, तो कौन कौन से गुटके? नकारात्मक संकल्प, नकारात्मक भाव, दृष्टिकोण, वृत्ति। और आज किसका है? और कौन से गुटके? ब्रेकफास्ट। हाँ, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, अपने प्रति निराशा का भाव। अपेक्षाएं और हीन भावना, दोनों ही, इन्फियोरिटी सुपियोरिटी, एक तो मैं ही सब कुछ हूं और दूसरा मैं कुछ भी नहीं हूं, दोनों में गड़बड़ है। और कौन कौन से गुटके है जिससे सुख खत्म हो जाता है, शांति नहीं रहती, आनंद समाप्त हो जाता है, प्रेम से दूर हो रख, प्रेम नहीं रहता है जी, बाबा भी मदद नहीं करता है, कोई भी मदद नहीं करता है, क्या इसलिए आए थे यहाँ पर? एक परिस्थिति गई नहीं, दूसरी आ गई, एक के बाद आई आई रहे, एक कभी बीमारी गई, कोई कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ, कब करे पुरुषार्थ? कंटिन्यूस आती रहती है, दिन रात, दिवस रात, राम महायुद्धा सा प्रसंग, अंतर बाह्य मन आनी जग, दिन रात युद्ध ही युद्ध है, क्या करे? और तो सब कुछ मुझे ही करना है, ऐसी दूसरों की अपेक्षाएं होती कि यही सब कुछ करे, तब भी दुख सुख शांति आनंद प्रेम दूर हो जाता है। और ज्ञान की ही विस्मृति, अज्ञान तो कोई है ही नहीं, अज्ञान कोई अस्तित्व नहीं, अज्ञान कोई एंटिटी नहीं है, ज्ञान का न होना ही अज्ञान है। जैसे अंधकार की कोई परिभाषा नहीं है, अंधकार कोई व्यक्ति नहीं है, अंधकार प्रकाश का न होना ही अंधकार है। तो इसके लिए जब जीवन में अंधकार है तो हमें प्रकाश लाना है वहां, अंधकार से लड़ने झगड़ते नहीं बैठना है, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां अंधकार है ही नहीं। गुफा के अंधकार ने एक बार पूछा था सूरज से कि तुम यहां आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह आ जाती हूं, मुझे देखना है कि तुम कहते हो तुम बहुत प्रकाशमान हो, कैसे हो, मुझे देखना है इस जगत को, जगत के प्रकाश को, क्या अंतर है? सूरज कहता है ठीक है। गुफा का अंधकार ऊपर उठ के जाता है और सूरज नीचे आता है। अंधकार कहता है आहा, कितना प्रकाश है, पहली बार देख रहा हूं, कितना अंतर है यहां में और वहां में। सूरज गुफा में आता है, कहता है सेम है, वो भी वही था, यहां पर भी वही हूं, जहां सूर्य है वहां पर अंधकार हो नहीं सकता। एक मुरली में बाबा ने कहा था, ज्ञान सूर्य जो है तुम्हारे हृदय में कभी अस्त ना हो, ये सूर्य स्मृति का निरंतर उदय हुआ हो, दोपहर में जैसा सूरज सर के ऊपर है वैसा यह ज्ञान का, यह स्मृति का सूरज तुम्हारे ऊपर हो, तो कभी अंधकार नहीं आएगा। ओम शांति।